पृष्ठ संख्या 19। अगस्त 1944 में अंबेडकर ने वायसराय से अपील की कि वे हिंदू, मुस्लिम और दलित वर्गों की समस्याओं का समाधान करने के लिए त्रिपक्षीय वार्ता कराएं। इसी तरह का मशवरा उन्होंने गांधी जी को भी दिया, किंतु 1942 के अगस्त क्रांति में गांधी जी के नेतृत्व में छेड़े गए संग्राम के साथ डॉक्टर अंबेडकर ने जो व्यवहार किया था, उससे क्षुब्ध होने के कारण कांग्रेस उनके सुझावों पर बहुत गौर करने के लिए तैयार नहीं थी। कांग्रेसी नेतृत्व को लगने लगा था द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन की जो राजनैतिक हालत है, उसमें अंग्रेज कांग्रेस के ही हाथ में सत्ता सौंप कर आज़ादी देने वाले हैं। 1944 में सप्रू कमेटी संविधान का नया मसविदा तैयार करने में व्यस्त थी। डॉक्टर अंबेडकर को परिस्थितियों का पूरा आकलन था। वे बार बार कहते थे, जो भी दल दलितों की समस्याओं को अपने हाथ में लेगा, वे उस दल का पूरा साथ देंगे। मद्रास म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में भाषण करते हुए उन्होंने कहा, केवल संसदीय लोकतांत्रिक सरकार जो वयस्क मत से चुनी जाएगी, उतने से ही हम लोगों की सभी समस्याओं का समाधान नहीं हो जाएगा। असल सवाल यह है, क्या दलितों के भी हाथ में राजनैतिक शक्ति आती है या नहीं? उन्होंने सप्रू कमेटी के साथ सहयोग भी करने से इनकार कर दिया, क्योंकि उनकी राय में उस कमेटी के कुछ सदस्य उनसे खुश नहीं रहते। अंबेडकर ने मई 1945 में बंबई में दलितों का एक सम्मेलन किया। इस सम्मेलन के माध्यम से नए संविधान के लिए कुछ सूत्र सुझाए गए। एक, बहुमत का शासन सिद्धांत में तो स्वीकार्य है, लेकिन व्यवहार में न्यायोचित नहीं है। दो, हिंदुओं को अपने पूर्ण बहुमत के अभिमान के साथ प्रतिनिधित्व का दावा नहीं करना चाहिए। तीन, उन्हें अल्पमत वर्गों पर अपने बहुमत का एकाधिकारवादी शासन थोपने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। चार, उसी तरह अन्य अल्पसंख्यकों को भी इतना प्रतिनिधित्व न दे दिया जाए कि वे अपने को बहुमत का दावा करने लगें। पांच, बहुमत को चाहिए कि शासन और राजनैतिक शक्ति का हिस्सा अल्पसंख्यक और कमजोर वर्गों को उनकी संख्या के अनुपात में दे दें। छह, सभी अल्पसंख्यक वर्ग आपसी सहमति से प्रतिनिधि सभाओं में अपने प्रतिनिधित्व का दावा पेश करें। इस प्रस्ताव के आधार पर उनका सुझाव था, केंद्रीय धारा सभा में 40% प्रतिनिधित्व हिंदुओं ब्रैकेट में सवर्णों ब्रैकेट क्लोज को दिया जाए, 32% मुसलमानों को और 20% परिगणित जातियों व 3% ईसाई, 4% सिख तथा 1% एंग्लो इंडियन को दिया जाए। इसका अर्थ था कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के समय आगा खां की अध्यक्षता में अल्पसंख्यक वर्गों की बैठक के बाद जो सहमति हुई थी, उसी फॉर्मूले को स्वीकार किया जाए। उन्होंने सम्मिलित भारत की पैरवी की। उनके अनुसार उनकी योजना से मुसलमानों को हिंदुओं के प्रभुत्व से ज़्यादा सुरक्षा मिलेगी। वे अनुसूचित जनजातियों को किसी तरह का प्रतिनिधित्व देने के पक्ष में नहीं थे। उनकी मान्यता थी कि इन वर्गों में कोई चेतना नहीं हो, अर्थात इन वर्गों के बारे में इनके वही तर्क थे जो दलितों को अधिकार देने के बारे में 1919 में कांग्रेस नेतृत्व के तर्क थे। पृष्ठ संख्या 20। वे संविधान निर्मात्री सभा के भी गठन के खिलाफ थे, क्योंकि उनकी राय में ऐसा करने से देश में गृह युद्ध छिड़ने का अंदेशा रहेगा। जून 1945 में शिमला में वायसराय ने संविधान बनाने के संबंध में सभी पक्षों की जो बैठक बुलाई, उसमें अंबेडकर काउंसिल का मेंबर होने के नाते नहीं गए, लेकिन उन्होंने परिगणित जातियों के लिए विषय वस्तु अवश्य तैयार की। वायसराय ने 1946 के नए चुनाव के अनुसार नई सरकार के गठन की घोषणा की। तब डॉक्टर अंबेडकर ने वायसराय की काउंसिल से मई 1946 में त्यागपत्र दे दिया, क्योंकि शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन 1946 के चुनाव में बुरी तरह पराजित हो गया। यह विशेष चिंतन का विषय है कि क्या 1942 के आंदोलन के साथ डॉक्टर अंबेडकर का जो बर्ताव था, उसके कारण तो ऐसा नहीं हुआ। यद्यपि इस चुनाव में उन्होंने सभी प्रांतों का दौरा किया, वे अपनी सभाओं में कहते थे, जो कोई भी संविधान उन लोगों की सहमति के बिना तैयार होगा, उसे स्वीकार करना उनकी बाध्यता नहीं होगी। वे समान अधिकार चाहते थे, संरक्षण दिए जाने के खिलाफ थे। वे किसी निष्पक्ष अंतरराष्ट्रीय ट्रिब्यूनल के पंचाट को भी मानने के लिए तैयार थे। कांग्रेस के नेता उनकी भावनाओं का स्वागत करते थे और उसे वांछनीय मानते थे, लेकिन वे लोग उनके तौर तरीकों के विरोधी थे। इस तरह इस चुनाव के दलित संगठनों और कांग्रेस के बीच दूरी बनी रही, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर के एक बड़े अध्याय का समापन 1946 में हो गया। ब्रिटिश संसद ने 15 जुलाई 1947 को भारत को आज़ाद करने का विधेयक पास कर दिया। यह निश्चित हो गया कि जवाहरलाल नेहरू खंडित भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे। उन्होंने अगस्त के प्रथम सप्ताह में ही अपने मंत्रिपरिषद के सदस्यों की घोषणा करा दी। 15 अगस्त को भारत की आज़ादी के साथ ही डॉक्टर अंबेडकर प्रथम कानून मंत्री बने। कांग्रेस पार्टी ने 10 वर्षों की गई भूल का नए सिरे से मार्जन किया। यदि अंतरिम सरकार ब्रैकेट में 1937 ब्रैकेट क्लोज में ही बम्बई में डॉक्टर अंबेडकर को कांग्रेस ने सम्मानित कर लिया होता, तो शायद 1940 से 42 के स्वतंत्रता संग्राम में ज़्यादा मजबूती दिखाई देती। देश के दलित समाज को भी बहुत पहले राष्ट्र की मुख्य धारा का मेरुदंड बना दिया गया होता और शायद भारत माता के एक महान सपूत डॉक्टर अंबेडकर, जिनके माथे पर यह कलंक लगा कि उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन का साथ नहीं दिया, इस कलंक से वे बच जाते। देश के संविधान निर्माण की जो प्रक्रिया चल निकली थी, उसे डॉक्टर अंबेडकर के कारण एक महान वैचारिक समर्थन मिला। डॉक्टर अंबेडकर की पार्टी ने 1946 के चुनाव में बुरी तरह पराजय का सामना किया। शायद ऐसी बात उनके साथ भी न होती, उन्होंने अंततः कांग्रेस और गांधी जी के प्रति अपने दुराग्रह को पूरी तरह त्याग दिया। ऐसी संधि होने में सरदार वल्लभ भाई पटेल का विशेष योगदान था। उनकी पहल पर अंबेडकर ने संविधान सभा की सदस्यता स्वीकार की। वे बंगाल से जीत कर संविधान सभा में आए। बाद में बंगाल पाकिस्तान का हिस्सा बन गया, इसीलिए अंबेडकर साहब की मेंबरी भी जाती रही। फिर वे बॉम्बे कांग्रेस विधानमंडल द्वारा चुने गए, क्योंकि डॉक्टर एम आर जयकर के त्यागपत्र के कारण वह स्थान रिक्त पड़ा था। संविधान निर्मात्री सभा ने उन्हें ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष बना दिया। कानून मंत्री और मसविदा समिति के अध्यक्ष के रूप में तथा संविधान निर्माण में इनके सहयोग को सदैव सराहा जाएगा। कानून मंत्री की हैसियत से वे हिंदू कोड बिल पेश करना चाह रहे थे। हिंदू विवाह और उत्तराधिकार संबंधी कानून एक जैसे और सम्यक नहीं थे। पृष्ठ संख्या 21। इनको संहिताबद्ध करना जरूरी था। अंबेडकर के शब्दों में, व्यावहारिक रूप से एक सिविल संहिता तो है, किंतु विवाह और उत्तराधिकार के मामलों में अप्रभावी और अपर्याप्त है। उनकी मान्यता थी कि मुस्लिम पर्सनल कानून पूरे देश के लिए एक जैसा है। 1935 तक शरीयत के कानून उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांतों में प्रचलित नहीं थे। उन इलाकों में हिंदुओं का उत्तराधिकार कानून ही प्रचलन में था। यह तो 1939 में कानून बनाकर उन क्षेत्रों में लागू किया गया। हिंदू संहिता में कुछ नई बातें जोड़ी गईं। 1. जन्मना अधिकार की समाप्ति। 2. महिलाओं को भी संपत्ति पर पूरा अधिकार। 3. पुत्री को भी पिता की संपत्ति में एक हिस्सा। 4. तथा तलाक की व्यवस्था। ये सभी प्रावधान नए थे, लेकिन धर्म विरोधी नहीं थे। हिंदू धार्मिक संगठनों ने इसे जबरदस्त विरोध का मुद्दा बनाया। सभी हिंदू समुदाय के लिए एक जैसे हिंदू कानून नहीं थे, इसीलिए कानूनों को संहिताबद्ध करने की आवश्यकता थी। अंबेडकर के शब्दों में, भारतीय संविधान बन जाने के बाद ऐसा कानून बनाना उसकी आवश्यक परिणति है, तथा मौजूदा हिंदू कानून बेतरतीब और संविधान के कानून के समक्ष समता के अधिकार के विपरीत है। इसीलिए मूल अधिकारों को अक्षुण बनाए रखने के लिए ऐसे कानून की जरूरत है। डॉक्टर अंबेडकर ने स्पष्ट किया कि 1941 में बीएन राव की अध्यक्षता में हिंदू कानूनों को संहिताबद्ध करने के लिए संसद की सेलेक्ट कमेटी ने मसविदा तैयार किया था। इस मसविदे को संसद में प्रस्तावित भी किया गया था, किंतु 1947 में नई संसद सरकार आने के बाद प्रस्तावित संशोधन स्वतः निरस्त हो गए थे। संविधान सभा ने इन कानूनों को संहिताबद्ध करने के लिए अंबेडकर की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई थी। कमेटी ने काफी विचार के बाद एक मसविदा तैयार किया और अगस्त 1948 में वांछित संशोधन के साथ सभा के समक्ष प्रस्तुत कर दिया। फिर अंतरिम संसद में अक्टूबर 1948 में इस विधेयक के प्रस्तुत करते ही देश के हिंदू धार्मिक संगठनों ने इसके विरोध में तीव्र आक्रोश व्यक्त किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे पास कराने के लिए प्रतिष्ठा का विषय बना लिया। गृहमंत्री सरदार पटेल अंधविश्वासी हिंदू संगठनों के दबाव में आ गए। वे इस विधेयक के पक्ष में नहीं थे। जवाहरलाल ने त्यागपत्र देने की धमकी दे दी। मंत्रिमंडल के भीतर आपसी खींचतान के बावजूद 5 फरवरी 1951 को अंबेडकर ने इस विधेयक को संसद में पेश कर दिया। उन्होंने कहा, हिंदू संहिता पूरे देश में समान रूप से लागू होगी। उन्होंने धर्म निरपेक्षता की वकालत करते हुए कहा, इसके माने नहीं है कि हम धर्मों का त्याग कर दें। वे इस बिंदु पर जनमत संग्रह कराए जाने के खिलाफ थे, क्योंकि संसद देश की भावनाओं का प्रतिनिधित्व करती है। वह कानून बनाने में सार्वभौम है। संसद में 3 दिनों तक बहस हुई। पूरे देश में हिंदू संगठन आंदोलनरत थे। पार्टी के भीतर भी ऊहापोह था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और सरदार पटेल का कहना था कि देश में प्रथम आम चुनाव निकट है, हिंदुओं के कट्टरपंथी तत्वों को इस कानून के शीघ्रता में पास करने से प्रोत्साहन मिलेगा। इसीलिए कानून पर विचार सितंबर 1951 तक के लिए स्थगित हो गया। अंबेडकर 1952 के चुनाव में इसे मुद्दा बनाकर लड़ने के पक्ष में थे, किंतु नेहरू जी पार्टी के अंदरूनी दबाव में समक्ष दब गए और उन्होंने कहा कि तलाक और विवाह संबंधी विषय को विधेयक से अलग कर अलग विधेयक के रूप में पेश किया जाए। इस सवाल पर नेहरू और अंबेडकर में असहमति हो गई। अंबेडकर का कहना था कि ऐसा करने से विधेयक की मंशा पूरी नहीं होगी। पृष्ठ संख्या 22। इससे नाखुश होकर उन्होंने सितंबर 27, 1951 को मंत्री परिषद से त्याग पत्र दे दिया तथा एक प्रेस सम्मेलन में कहा कि नेहरू ने मुझे हर कैबिनेट कमेटी से बाहर किया। उन्होंने मुझे योजना विभाग का मंत्री बनाने के लिए कहा था, लेकिन कानून मंत्री बनाकर सरकार ने अनुसूचित जातियों के सवालों पर कोई रुचि नहीं दिखाई। कश्मीर के भी मामले में हमारे सरकार से विरोध थे। अंबेडकर ने कश्मीर के बंटवारे का सुझाव रखा था। उनका आग्रह था कि हिंदू बहुल क्षेत्र भारत को और मुस्लिम बहुल क्षेत्र पाकिस्तान को दे दिया जाए। उनके शब्दों में वैदेशिक नीति दोषपूर्ण है, जिसके कारण रक्षा व्यय बढ़ाना पड़ रहा है। सरकार की वैदेशिक नीति के कारण ही दुनिया में दुश्मन बढ़े हैं, दोस्त कम हुए हैं। इस तरह अंबेडकर के त्यागपत्र से एक दूसरे अध्याय का पटापेक्ष हो गया। केंद्रीय मंत्री परिषद से अंबेडकर के त्यागपत्र देने के बाद देश का प्रथम आम चुनाव निकट था। देश की आज़ादी का श्रेय कांग्रेस ले रही थी। आम जनता में भाव था कि कांग्रेस को महात्मा गांधी जैसे नेता ने बनाया था। जवाहरलाल नेहरू का चमत्कारिक नेतृत्व कांग्रेस के पास था, इसीलिए अभी भी पूरे देश में राजनैतिक दल के रूप में कांग्रेस की हैसियत निर्विवाद थी। शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन की 1946 के चुनाव में बड़ी हार हो चुकी थी। समाजवादियों ने कांग्रेस छोड़कर एक स्वतंत्र राजनैतिक संगठन खड़ा कर लिया था। 1942 की जनक्रांति के समय इनके युवा नेताओं का आम लोगों पर प्रभाव था। इस संगठन में वैचारिक व समर्पित नेता थे। महाराष्ट्र स्तर की एक पार्टी पीजेंट्स एंड वर्कर पार्टी पहले से काम कर रही थी। इस पार्टी की रुझान मार्क्सवादी थी। SCF के साथियों की राय थी कि अकेले चुनाव के महासंग्राम में हमारा दल नहीं उतर सकता, इसीलिए P&W पार्टी से एक कारगर समझौता कर लेना चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर P&W पार्टी के वर्ग चरित्र को पसंद नहीं करते थे। उनकी मान्यता थी कि यह दल वैचारिक रूप में मार्क्सवादी माले से कम्युनिस्ट पार्टी के साथ उसके रिश्ते अच्छे हो सकते हैं, किंतु व्यवहारिक रूप में यह दल जातिवादी है। इसका पूरा नेतृत्व मराठाओं के हाथ में है। उसी तरह वे हिंदू महासभा और जनसंघ को एक सांप्रदायिक दल मानते थे। उनके पास केवल सांप्रदायिक विषयों को उठाने के अलावा कोई विषय नहीं है, इसीलिए उन्होंने जयप्रकाश नारायण और अशोक मेहता की पहल पर समाजवादी पार्टी के साथ समझौते को स्वीकार कर लिया। उन्होंने दावे के साथ कहा, कुछ लोगों की कोशिश थी कि हम राजनैतिक स्तर पर भी अस्पृश्य बने रहें। समाजवादियों ने हमसे समझौता करके राजनैतिक तौर पर हमें अछूत होने से बचा लिया। उन्होंने अपने दल के पहले घोषणा पत्र में सभी को भाषण, लेखन, कर्म और विचरण की पूरी आजादी देने का संकल्प किया। सभी हिंदुस्तानियों के लिए भ्रातृत्व, एकता और समता का समाज बनाने का वचन दिया। मनुष्य द्वारा मनुष्य की लूट से मुक्ति, वर्ग की वर्गों द्वारा लूट, राष्ट्र का राष्ट्र लूट से मुक्ति दिलाने हेतु नीतियां बनाने तथा संसदीय पद्धति को किसी कीमत पर जिंदा रखने का वचन दिया। अपने घोषणा पत्र में नशाबंदी पूरी तरह लागू करने और बीमा का राष्ट्रीयकरण करने की बात कही गई। उनकी पार्टी ने फैसला किया कि स्वतंत्र उम्मीदवारों का कतई समर्थन नहीं किया जाएगा। किसी प्रतिक्रियावादी दल जैसे हिंदू महासभा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ किसी तरह का समझौता नहीं होगा। साम्यवादी पार्टी के साथ कोई सहयोग नहीं होगा, लेकिन पिछड़ी जातियों का प्रतिनिधित्व करने वाले दलों के साथ सहयोग किया जाएगा। उनके दल में दो दलीय सिद्धांत में आस्था व्यक्त की गई तथा छोटे छोटे दलों के परित्याग करने की बात कही गई। पृष्ठ संख्या 23। ऐसे दल जिनकी तानाशाही में निष्ठा है तथा जो केवल एकाधिकारवाद के प्रति वचनबद्ध हैं, उनसे कोई सरोकार नहीं होगा। बंबई नगर के समाजवादी अशोक मेहता और डॉक्टर अंबेडकर आरक्षित सीट से एक साथ लड़े। जवाहरलाल नेहरू ने अपने चुनाव अभियान में सपा और SCF समझौते को अपवित्र गठबंधन की संज्ञा दी। बंबई में मजदूर संगठनों पर समाजवादियों का विशेष प्रभाव था। दलित वर्गों में डॉक्टर अंबेडकर का विशेष प्रभाव था, फिर भी दोनों की हार हुई। उस समय के लोगों का आकलन है कि उस पराजय की खास जिम्मेदारी डॉक्टर अंबेडकर के चुनावी भाषणों पर थी। वे पूरे तौर पर कश्मीर के विभाजन के पक्षधर थे। उनका कहना था, हमारे जीतने पर कश्मीर का बंटवारा होगा, मुस्लिम बहुल कश्मीर का क्षेत्र पाकिस्तान को सुपुर्द होगा और हिंदू तथा बौद्ध बहुल कश्मीर भारत का अंग रहेगा। ऐसा भाषण बंबई का कोई विषय नहीं था। चूंकि बंटवारे का घाव तगड़ा था, लोग देश के बंटवारे के घाव को अभी भूले नहीं थे, तभी कश्मीर के बंटवारे के सवाल को छेड़ना समयोचित नहीं था। उन्होंने बार बार इस बात पर जोर दिया कि मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन का अधिकार देने की कोई जरूरत नहीं है। उनके इन भाषणों से हिंदू और मुसलमान दोनों ही नाराज होने लगे। अभी उनके दल के पूरे पांव जमे नहीं थे, तभी इस तरह के उत्तेजक भाषणों से सभी वर्गों की नाराजगी ही मिली और सपा SCF गठबंधन चुनाव में पराजित हो गया। फिर मार्च 1952 में वे राज्यसभा के लिए चुने गए। उन्होंने 1954 के एक उपचुनाव में लोकसभा का दोबारा चुनाव लड़ा, लेकिन उसमें भी वह हार गए। वे 1937 से वायसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर होने तक बंबई विधान परिषद के सदस्य रहे। उधर 1942 से 1947 तक संविधान सभा अंतरिम संसद के सदस्य के रूप में उनके संसदीय कौशल की सभी ने सराहना की। राज्यसभा सदस्य के रूप में उन्होंने समय समय पर जो विचार व्यक्त किए, वह संसदीय बहस का स्वर्णिम अध्याय है। उनके संसदीय ज्ञान और अनुभव का लाभ भारत की भावी पीढ़ी सदैव उठाती रहेगी। डॉक्टर अंबेडकर का बौद्ध धर्म के प्रति विशेष आकर्षण था। जब वे 16 वर्ष के थे, तभी उन्हें गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित पुस्तक किसी व्यक्ति ने भेंट की। उन्हें अपने जीवन के प्रारंभिक काल में हिंदू धर्म के छुआछूत का कटु अनुभव था। उन्होंने जीवन के हर मोड़ पर जाति से उपजी विषमता के अपमान को झेला था, इसीलिए उनके मन में हिंदू धर्म के प्रति कठोर भाव पैदा हो गया था। उन्होंने विश्व के सभी धर्मों के मूल तत्वों को बारीकी से पढ़ा और उसकी विवेचना की। उन्हें बौद्ध धर्म में प्रतिपादित ज्ञान, करुणा और समता के सिद्धांत बहुत ही आकर्षक लगे। 1945 में उन्होंने एक बौद्ध सम्मेलन में हिस्सेदारी की तथा 1946 में सिद्धार्थ के नाम से एक शिक्षण संस्था का प्रारंभ किया। उन्होंने 1948 में बौद्ध धर्म पर लिखी एक पुस्तक की समीक्षा लिखी। 1950 में उन्होंने दिल्ली के एक बौद्ध सम्मेलन में हिस्सा लिया। दिसंबर 1954 में तृतीय विश्व बौद्ध सम्मेलन में भाग लिया। बुद्ध जयंती के अवसर पर 1956 में उन्होंने सार्वजनिक रूप से बौद्ध धर्म स्वीकार करने की घोषणा कर दी। उन्होंने अक्टूबर 1956 में दशहरे के दिन नागपुर में बौद्ध धर्म की विधिवत दीक्षा ग्रहण कर ली। 15 अक्टूबर 1956 को नागपुर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने उनका अभिनंदन समारोह आयोजित किया। पृष्ठ संख्या 24। फिर 16 अक्टूबर को वे चांदा चले गए, जहां भारी संख्या में लोगों ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया। नवंबर 1956 में नेपाल की राजधानी काठमांडू में अखिल विश्व बौद्ध सम्मेलन हुआ था, जिसका उद्घाटन वहां के राजा महेंद्र ने किया था। अंबेडकर साहब इस सम्मेलन में पधारे और अपने विद्वत्तापूर्ण भाषण से सम्मेलन को चमत्कृत कर दिया था। उन्होंने संपत्ति संबंधी अवधारणा पर मार्क्स और बुद्ध के विचारों की तुलना की। उनके अनुसार निजी संपत्ति के अधिकार को बुद्ध के बताए रास्ते से ही सुगमता पूर्वक समाप्त किया जा सकता था। काठमांडू सम्मेलन से वापस आकर दिल्ली में उन्होंने दलाई लामा जी के स्वागत में एक समारोह का आयोजन किया। उन्होंने 4 दिसंबर को राज्यसभा की बैठक में हिस्सा लिया। महाराष्ट्र के प्रमुख नेता आचार्य अत्रे और श्री S.M. जोशी को अपनी रिपब्लिक पार्टी में सम्मिलित होने का निमंत्रण भी भेजा, किंतु अंबेडकर साहब डायबिटीज ब्लड प्रेशर के मरीज थे। अपनी अत्यधिक राजनैतिक व्यस्तताओं के चलते वे अपने खराब स्वास्थ्य की भी देख रेख नहीं कर पाते थे। अचानक 6 दिसंबर 1956 की रात सोते समय वे चीर निद्रा में विलीन हो गए। उनके मृत शरीर पर माल्यार्पण के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू, गृह मंत्री गोविंद वल्लभ पंत, श्रम मंत्री बाबू जगजीवन राम आदि सभी पहुंचे। लोकसभा, राज्यसभा, सचिवालय व सांसद नागरिक भारी संख्या में उनके निवास पहुंचे। उनका पार्थिव शरीर विशेष विमान से बंबई उनके निवास राजगृह पहुंचाया गया। लाखों नर नारी उनके पार्थिव शरीर के दर्शनार्थ पहुंचे। दादर के शमशान घाट पर बौद्ध धर्म के रीति रिवाज से उनका दाह संस्कार हुआ। उनके बहुतेरे शिष्यों को उनकी मृत्यु के पश्चात उनका पूरा शरीर काला नजर आया। उन लोगों ने उनकी मृत्यु के कारणों की जांच के लिए एक कमीशन बनाने की मांग की। प्रधानमंत्री नेहरू ने संसद में इन अफवाहों का खंडन किया और कहा कि उनकी मृत्यु स्वाभाविक ढंग से हृदय गति रुकने से हुई थी। अंबेडकर की मृत्यु से एक बहुत बड़े अध्याय का पटापेक्ष हुआ। एक ऐसा पुरुष जिसने हिम्मत और तेजस्विता के साथ इस देश की पीड़ित और दबी मानवता को साहसिक नेतृत्व दिया, जिसके दैदीप्यमान विचार, व्यक्तित्व एवं कृतित्व युगों तक दलित मानवता को न्याय दिलाने हेतु त्याग और उत्सर्ग का संदेश देता रहेगा।